نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم کامیابی کے نسخے پڑھ رہے ہیں اور ہمارا اس بک کو پڑھنے کا یا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ خود کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ موضوع آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے. یہ پہلی چیز ہے. ڈاکٹر کی دکان پہ گھنٹہ لگا کے بیٹھے ہیں اور گھر جا کے دوا کھولے بھی نہ تو اگلے دن آئیں گے تو کیا ڈاکٹر آپ کو اگلے دن کی دوا دے دے گا؟ اسی طرح ایک ٹیچر جو ہوتا ہے نا, اس کو بھی صرف بولتے نہیں رہنا چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسٹوڈنٹس نے جو دوا لی تھی اس کو استعمال بھی کیا کہ نہیں. تو یاد رکھیے, خاص طور پہ یہ جو ٹاپکس ہیں سیلف گرومنگ کے, یہ صرف سننے سے نہیں آتے. یہ موضوع ہمیں بہت فائدہ دیں گے جب ہم فائدہ لینا چاہیں گے, یہ ہمیں بدل دیں گے جب ہم خود کو بدلنا چاہیں گے, اور یہ ٹاپک ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے اگر ہم خود کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیں گے. کیا اس موضوع پہ بہت بولا اور کہا جاتا ہے؟ نہیں بولا جاتا. جب ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ خود آگہی. آپ اس کو ایسے سمجھیں, دیکھیں میں بالکل بہت چھوٹی بات کرتی ہوں اور بہت ہی ایسی بات کرنے کی عادی ہوں کہ جو بس سوچنا نہ پڑے اور بات ہم کر دیں. ڈاکٹر کی دکان پہ گئے نا, آپ کب جاتے ہیں ڈاکٹر کی دکان پہ؟ کوئی نہ کوئی اندر پین فیل ہوتا ہے. آپ کہتے کوئی گڑبڑ ہے, سر میں درد رہتا ہے, کبھی کہتے پیٹ میں درد رہتا ہے. خود آ گئی. ابھی تک ہم نے ایک ٹاپک کیا اور ابھی پورا نہیں کیا. میں اسی کو اب کنٹینیو کرتی ہوں, لیکن نیکسٹ ویک میں ایکسپیکٹ کروں گی آپ لوگ اس کو آپس میں سوال جواب کی صورت میں کر چکے ہوں, ورنہ آپ کا ذہن ہی نہیں ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز جس کو ہم ڈاکٹر کی دکان پر جانے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود آگہی ہو گئی تھی, سم تھنگ از گوئنگ ٹو بی رانگ. میرے اندر کوئی کمی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, رات کو نیند نہیں آتی, پیٹ میں درد ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو آپ اور میں جب تک اپنے بارے میں نہیں جانیں گے بات نہیں بنے گی. دیکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو ساری دنیا کی خبریں ہوتی ہیں, اپنے گھر میں رہنے والوں کا دکھ نہیں پتا ہوتا, اور بہت سارے لوگ ہیں جو سارے اخبار پڑھتے, اس پہ تبصرے کرتے, اس کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اپنے گھر کے مسائل ان کو حل کرنے نہیں آتے. بالکل اسی طرح میں سے بہت سارے لوگ جس ہستی کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں نا, وہ ہم خود ہیں. ہمارا ٹاپک ہے پیپل. وہ کہتے ہیں گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز, ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس, اور جو بالکل ہی لوز مائنڈ ہے نا وہ ڈسکس پیپل. آپ کسی دعوت شادی میں چلے جائیں, ٹرین میں سفر کر لیں, بس میں بیٹھ جائیں, ہمارے لوگ موسٹلی کیا چیز ڈسکس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سیاستدان, پھر کھلاڑی, پھر گلوکار اداکار, پھر برائیاں, پھر مہنگائی, پھر بجلی والوں کا, واپڈا والوں کے گناہ معاف کرتے جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے کسی سے بیٹھ کر بات کی ہو, آپ کی کوئی پیاری ہے, آپ اپنی دوست کے گھر جاتے ہیں, سلیپ اوور, چلیے آج میں جاتی ہوں, میری بہن تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا ہوں, کوئی میری عادت تمہیں اچھی لگتی ہے, کوئی بات میری بری لگتی ہے, کیا حقیقت میں تم نے مجھے دیکھا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک رات آپ کی زندگی کا نقشہ بدل سکتی ہے, جس رات سنسیئرلی آپ کی دوست نے آپ کو آپ کی باتیں بتا دی. ہم کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ رات بسر کروں گی, اور ساری رات ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ پہلے تو کچھ خود ساختہ دکھ سکھ غم, پھر اس کے بعد کپڑے, پھر کوئی اور باتیں, اور کوئی اگر موڈ خراب ہو یا مزاج بگڑا ہو تو کوئی فلم دیکھ لیں گے, پھر جب فجر کا بالکل قریب کا وقت ہوگا تو سو جائیں گے. تو آپ اس موضوع کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو رکھیے, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ڈسکس کریں. خود آگہی یہ آپ کی زندگی کا رخ مقرر کرے گی. سب سے زیادہ انٹرسٹ لیں اللہ کی ذات میں, اور واللہ ہی اس کے بعد دوسری چیز آپ خود ہیں. اسی کو کہتے ہیں نا, ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, من عرف نفسہ عرف ربہ. ایسی ایک کہاوت کہہ لیجئے, لوگ حدیث کہتے ہیں, حدیث نہیں ہے یعنی صحیح سند نہیں ہے, لیکن بات صحیح ہے کہ من عرف نفسہ ہو, جس نے اپنے نفس کو پا لیا نا, عرف ربہ, اس نے رب کو پا لیا. میرے رب نے مجھے اتنے پیار سے بنایا, اتنا پیار دیا مجھے, تو دو چیزوں کے بارے میں سوچا کریں, دو کے بارے میں کنسرن رہیں, دو کے بارے میں کیوریس رہیں. کیا؟ ایک آپ کا رب آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے, رب کی نظروں میں میں کیسی ہوں, رب مجھے کیسا جانتا ہے, اور دوسرا میں خود. نہ تو پیپل پلیزر بنے اور نہ آپ سیلف پلیزر بنے, آپ کو اللہ پلیزر بننا ہے. तो जब आप और मैं इसी तरह से जिंदगी के सफर पे चलेंगे ना, आप देखिए कि हम अपने अंदर को एक्सपोज करेंगे, हमारे अंदर खैर भी है शर भी है। अल्लाह ताला कहते हैं फल हमहा फजूरहा व तकवाहा, हमने इंसान में फजूर भी डाला है। फजरा कहते हैं हदों से गुजरना, फाजिर फट जाना, फटने वाला, ट्रांसग्रेशन इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो, ग़यानी सरकशी। और अल्लाह ने इल्हाम भी डाला है, खैर और शर का भी मादा है। सूरह दहर में अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इंसान के अंदर शर और खैर दोनों डाल दी। शुक्र कर ले कदरदान बन जाए, ना शुक्रा बन जाए तो जो मर्जी कर ले, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन याद रखिए, जब तक मैं अपने अंदर दिलचस्पी नहीं लूंगी, मैं कभी अपने आप को नहीं बदलूंगी और मेरे हालात भी नहीं बदलेंगे। बाज़ दफ़ा आपने लोगों से एक बात सुनी होगी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। सुना है कभी जुमला, मेरे साथ तो हमेशा धोखा होता है, लोग मुझे डॉच कर जाते हैं, लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा आप बैठ के सोते हैं, अच्छा आप मोस्टली क्या होता है, पहले जब आप ज़्यादा सोच नहीं रखते ना, तो आप कहते हैं हाय ये कितनी दुखी है मेरी दोस्त, हाय कितनी बेचारी के नसीब ही ऐसे हैं, पहले इसकी माँ सौतेली थी तो वो इसके साथ जुल्म करती रही, फिर ज़रा बड़ी हुई तो इसको दोस्तें इतनी ख़राब मिली, देखो भी शादी हुई तो सास इतनी प्रेजरस थी, फिर देखो शौहर जो थे वो किसी औरत में खो गए, और बच्चे देखो आप वो भी नहीं सुनते। वल्लाह ही आपकी दोस्त इतनी दुखी नहीं है। जब एक वाकया बार बार आपके साथ हो ना, तो मान लीजिए कि प्रॉब्लम आप खुद हैं, इतने लोग गलत नहीं हो सकते। आपका कोई एक एटीट्यूड होता है, कोई एक रवैया होता है, और बाज़ दफ़ा 10 खूबियां आपके पीछे पड़ जाती हैं सिर्फ एक खामी की वजह से। तो एक छोटी सी दुआ अपनी दुआ में शामिल करें, उर्दू में बोलें, नोश में बोलें, इंग्लिश में, कि अल्लाह मेरी वो आदत मुझे दिखा दे जो मुझे कामयाब होने से रोक रही है। और यकीन करें वो बस एक ही ऑब्स्टेकल होता है। आप इतने टैलेंटेड, आप इतने साबिर, आप इतने शाकिर, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बट आपकी एक ऐसी आदत है जो आपको पता ही नहीं है, और उसकी वजह से आप बार बार धोखा खाते हैं। हदीस में आता ला यलदगुल मोमिनु मिन हिजरिन वाहिद, खुलासा है हदीस का कि मोमिन एक सुराख से कभी दो बार नहीं डसा जाता। हमारी जुबान में लोग कहते हैं आजमाए हुए को कभी ना आजमाओ। एक दफा पत्थर रास्ते में आ गया तो ठोकर लगी ना, तो आप अगली दफा पहले चेक करें पत्थर तो नहीं है। मोमिन जीनियस होता है, मोमिन बेवकूफ नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, फइन्नहु यरा, वो अल्लाह की बुरहान से देख लेता है, गैब नहीं जानता, उसको लोगों की कोई दिल की बातें नहीं पता होती, या वो इतना नहीं पहुंच गया कि अल्लाह ने उसके लिए सारे राज ही खोल दिए। बट मोमिन जो होता है वो लोगों की चाल ढाल, उनके रवैये, उनकी बातों से समझ आता है कि इधर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन दिलों में तेल नहीं है। तो लिहाजा हम आप मैं सब जब भी अपने बारे में सोचें तो अपनी वो खामी ढूंढें। और हदीस में आता है एक दुआ है, आप में से अक्सर लोगों को मुझे यकीन है कि आती होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन, ए अल्लाह हक को हक करके दिखा, वरजुकना इत्तबाअहु, और मुझे उसकी इत्तबा की तौफीक दे दे। यानी अल्लाह जो हक है जो सच है, मिसाल है जिंदगी के छोटे छोटे मामले हैं, रिश्ते हो रहे हैं, घर ले रहे हैं, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो अब आप तो जाहिर को देखेंगे ना, शायद अंदर कुछ और हो, नहीं, अरिनल हक का हक्कन, ए अल्लाह हक को हक दिखा, ये रिश्ता अच्छा तो हो जाए, ये मामला अच्छा तो हो जाए, रस्ते बना दे, मेरा दिल जमा दे। यही तो रूह है इस्तखारे की भी, कि अल्लाह मैं अस्तखीरु का विल्मी का वस्तकदीरु का भी कुदरती का वसलु का मिन फद्रिक अलअज़ीम, कि अल्लाह मैं तेरे इल्म से तेरी कुदरत से मांगती हूँ। तो क्या कहते हैं अल्लाह, अगर ये मामला मेरे हक में बेहतर है तो तू फकदुर हुली अल खैर, इसको मेरे लिए आसान कर दे, यस्सिर हुली, वाय, क्योंकि मैं नहीं जानती। तो याद रखिए, जब आप अपने आप को छोटा और अल्लाह को सबसे बड़ा समझेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको ये जरूर सलाहियत देगा कि आप गलत फैसलों से बच जाएंगे, सही फैसले करके भी ठोकरे खाएंगे। ये भी बता दूं, ये दुनिया जो है ना, ये आसान जिंदगी नहीं है, ये जीना आसान नहीं है। अल्लाह ने हमें कई मुख्तलिफ चीज़ों के बीच में रखा हुआ है, एक पजल इधर से जुड़ा हुआ है, दूसरा उधर से जुड़ा। कभी आपने बच्चों के पजल्स देखे होंगे या खेले होंगे, 19-20 के फर्क से वो पजल उस जगह फिट नहीं होता, और उस पजल का एक टुकड़ा खो जाए ना, तो आप देखिए तस्वीर अधूरी रहती है। इस तरह मेरी आपकी जिंदगी दूसरों के साथ जुड़ी हुई है, नथी हुई भी है। अच्छा बंदा बुरी जगह पे, बुरे हालात में अच्छा बंदा बेकार हो जाते हैं। आप अपने आप को जाया कर देते हैं, बाज़ दफ़ा पूरी जिंदगी आपकी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप ठीक जगह पे नहीं होते, और बाज़ दफ़ा आपके अंदर कोई इतनी खूबी कोई नहीं होती। अल्लाह आपको ऐसी जगह पे ले जाता है, आपको ऐसे बंदे से मिला देता है, आपकी ऐसी जगह शादी हो जाती है, आपका सब सोया हुआ टैलेंट जो है वो खुल के बाहर आने लग जाता है। तो ये जीना एक आर्ट है, आसान नहीं है, क्योंकि यही तो जन्नत है दुनिया की। कि अल्लाह ताला के नबी ने क्या फरमाया कि एक इंसान सारी जिंदगी कोशिश करता है, हत्ता के मौत के बिस्तर पे जब वो पहुंच जाता है तो उसको फिर उस वक्त पता चलता है कि वो कहाँ पहुंचा हुआ था। तो कामयाब होना चाहते हैं मैं और आप, तो सबसे पहले आप अपनी बुराइयों को नोट करें, दूसरों को इजाजत दें, इखलास के साथ, इसलाह के साथ, खैरख्वाही के साथ, मोहब्बत के साथ, आपको याद दिलाएं लोग कि आपके अंदर ये चीज़ है। आईने को देखिए, आपके चेहरे पे एक दाग है, जो ही आप आईने के सामने आएंगे वो दाग आपको दिखेगा, कितना दिखेगा, जितना वो है। अच्छा, आप आईने से हटे, आपके पीछे कोई और आ गया, क्या उस दूसरे को वो दाग दिखेगा? आईना कभी दूसरे को आपकी बुराई नहीं बताता, वो कहे तुम्हें बताऊं, तुम तो छोड़ो, वो देखो तुमसे पिछली वाली के चेहरे पे दाग था। आज हम इंसानों में रहते हुए अपने आप को इतना कम जानते हैं, और मुझे दुख होता है अपने उन दोस्तों और साथियों पे जो आपकी बुराइयां जानते हैं, दिल में सोच रहे होते हैं लेकिन आपको नहीं बताते। क्यों? आप माइंड करेंगी। मैंने कई दफा मिसाल दी है, एक आध ऐसे हालात वाकयात हुए कि एक बच्ची को मैंने देखा, वो आंखें बहुत खोलती थी। अच्छा, जब बहुत बंदा आंखें खोल के खड़ा होता है ना, कनिंग लगता है, होशियार लगता है। तो पहले तो वो स्टूडेंट थी, मुझे इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, मैं महसूस तो मैं इसे ही करती थी। खैर, एज अ स्टाफ किसी चीज में आ गई तो वो अब हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी कहीं। तो मैंने उनसे जब बातें हुई बाकी, तो प्यार से मैंने उनको अकेले में सेल्फ ग्रूमिंग में कहा कि बेटा आप आंखें थोड़ी कम खोलें तो अच्छा लगे। अच्छा, मैं आधा जुमला बोल के खामोश होगी कि इसको तो पहले ही पता होगा, लेकिन बंदे को पता भी होता है फिर भी नहीं पता चलता। उसके बाद जो उसने मुझे कमेंट दिया अगले दिन या जब भी हुआ, कहने लगी आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही। और मैं सोच रही थी कि इनको पता तो होगी, दोस्तें भी बताती होंगी, लेकिन इनको बेचारी को नहीं समझ आई। और वो कहती हैं कि आज तक मुझे किसी ने ये बात फील ही नहीं कराई कि मेरी आंखें ज्यादा खुलती हैं, और सिर्फ इसकी वजह से उनका एक्सप्रेशन होशियार चलाक आता था। तो जिंदगी में वो दोस्त आपके दोस्त नहीं है जो आपको आपकी बुराई ना बताएं। खूबियां हम दोस्तों से सुनते हैं और खराबियां हम दुश्मनों से सुनते हैं, हालांकि वो दुश्मन ज्यादा अच्छा है जो आपकी एक ऐसी खराबी आपको बता दे जो आपके दोस्त नहीं बोल सके। तो खुद आगही का सफर बहुत अहम है। हम बहुत ज़्यादा गलत फहमियों का शिकार होते हैं, यकीन करें, मैं तो इतनी अच्छी, मैं तो ऐसी हूँ, मुझे तो ये है, मेरे साथ तो ये, मैं बोलते रहते हैं सारा दिन। कभी आप बैठ के आंटियों की बातें सुने, मैं ऐसे पकाती हूँ, मेरा ये मामला, मेरे साथ ये है, मैं तो मिनटों में बिरयानी बना लेती हूँ, मैं तो झटपट घर साफ करती हूँ, मेरे हाथ में तो ये। आप कभी भी कॉमन लोग जो होते हैं ना उनकी बातें सुने, हमेशा अपने गुण गाते हैं। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में कुरैश वालों को कहा था कि जब मुज़दलिफा चले जाते हो तो अल्लाह का जिक्र वैसे किया करो, का ज़िक्रिकुम आबाउकुम, जैसे अपने बाप दादा और बड़ों की बड़ाइयां बयान करते हो ना, वो छोड़ो, कसीदे ना पढ़ो, अल्लाह की हम्द करो। क्यों? क्योंकि इनकी आदत ही अपनी बड़ाइयां करने की। आज हम इंसान यकीन कीजिए कि अक्सर औकात गलत बातें कर रहे होते हैं, माने ना माने, मैं खुद अपने आप को इसमें कहूंगी, हम दिन का ज्यादा हिस्सा बिल्कुल बेकार बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, ना फायदा ना उससे किसी का मकसद, और जो बातें करनी होती हैं उससे कोई बात ही नहीं जानता। हम सोचते हैं अच्छा जी हम क्यों बोलें, हम क्यों बुरे बने। और जो बंदा अपने आप को खुद अल्लाह के सामने पेश कर दे ना, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ती हैं ना, आप अल्लाह ताला से एक दफा जरूर पूरे दिन में शऊर से ये कहा करें कि अल्लाह वारी नल बातिला बातिलन वर जुक न इज्तनाबा। उसी दुआ का अगला हिस्सा है कि अल्लाह मुझे बातिल को बातिल करके दिखा, फिर मुझे उसे इज्तनाब सिखा, मैं उससे पीछे हो जाऊं, यानी मेरी खामियां मुझे दिखा, मेरी कमजोरियां मुझे दिखा, और फिर तौफीक दे मुझे कि मैं बाद में उसको ठीक तरह से कर सकूं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज जो है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगी और आप अपने आप को ज़ाया नहीं करेंगे। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। मसलन, आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को लीजिए, यानी आपके प्यारे, माँ के लिए बच्चा बहुत प्यारा होता है। बस माएँ अपने बच्चे की भी बुराई दूसरे से नहीं सुन सकती, मेरा बच्चा ये कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो ऐसी कर ही नहीं सकती, ऐसी हो ही नहीं सकती, ये नहीं हो सकता। और बस दफ़ा बात जब हद से गुजर जाती है, सबको वो बात समझ आ चुकी होती है, हमें नहीं आती, तो तो फिर हमारी बदनामी होती है। जिस तरह आपको अपनी खुद आगही चाहिए ना, तो आपसे रेलेवेंट आपके बच्चे, आपके करीबी, आपके साथी, आपके स्टूडेंट, आपके कुलीग्स, आपको उनकी बुराइयां भी बतानी चाहिए। फिर इखलास के साथ, दर्दमंदी के साथ, प्यार के साथ आप क्या करें, उनके साथ बात करें। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों में आप देखेंगी कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। एक बर्तन है, उस पर कालस लग चुकी है, काला हो गया ना। अब आप देखिए एक एक लोग कहते हैं इसके अंदर हम नहीं पकाते, इसको फेंको, ये काला है, ये वो है, ये वैसा है, ये तैसा है। दूसरा बंदा कहता है लाओ स्क्रब है, वो कोई स्टील वूल है, वो उसको चमकाता है, थोड़ा सा हाथ लगाता है तो काफ़ी ज़्यादा कालत तो उतर गई, फिर भी अभी है, देखने में पुरानी है। आपको कोई ऐसी प्यारी दोस्त मिल जाती है, वो कहती है ये बस एक दिन के लिए मुझे दे दो, ये पतीली मैं अपने घर ले जाऊँ, कल ले आऊँगी। अगले दिन जब लाती है तो आप तो उसको पहचान ही नहीं सकते। क्यों? वो चमक रही है। भैया आपने क्या कि नहीं ले आई? कहती नहीं तो नहीं लाई, बस रात को मैंने इसको रगड़ा, बस ये रगड़ाई करनी है मैंने आपने। अंदर से हर इंसान खूबसूरत होता है। मैं कभी मानती नहीं हूं कि कोई बंदा बुरा होगा। मुझे आज तक अपनी जिंदगी में कोई एक बुरा इंसान नहीं नजर आया। किसी खराब इंसान से मेरा वास्ता नहीं पड़ा, और अल्लाह ना डाले। क्यों? मेरा ईमान है खालिक कोई डिफेक्टेड पीस नहीं पैदा करेगा। देखिए दुनिया में ब्रांड कहते हैं ना, कॉन्शियस होते हैं लोग, बाज क्वालिटी कॉन्शियस है। जरा स्टैम्प टेढ़ी हो गई, वो कहते हैं रिजेक्टेड, इसको आउटलेट्स में बेच दो, इसको हम अपने नाम से अपने स्टोर में नहीं बेचेंगे। है ना ऐसे ब्रांड्स दुनिया में? वो कहते हैं नहीं जी, हम लोग खराब चीज नहीं दे सकते, एरर आ जाते हैं, निकाल दो उसको। तो क्या अल्लाह ताला एरर्स वाले इंसान पैदा करेगा? क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है। फिर बाद में उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी, जो मर्जी बना दें, अंदर से हर बच्चा खूबसूरत है। आप भी खूबसूरत हैं, आपका अंदर भी खूबसूरत है, लेकिन हालात की कालस होती है, माहौल जैसा मिलता है। किसी को अच्छे माँ बाप मिल गए तो अच्छे मिल गए, बुरे मिल गए तो बुरे मिल गए। और आप ज़ाहर लोगों को वो काला बर्तन दिख रहे होते हैं, क्रिमिनल्स, शराबी, पापी, बदतमीज, ऊंची बोलने वाले, झगड़ालू, लड़ाके, आप कहते हैं ये बहुत खराब है। नहीं, अंदर वो सही थी, मेरे रब ने नहीं खराब पैदा किया आपको। आप लिखें अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस। मैं कहती हूँ यहां बैठे बैठे आपका दिल खुल सकता है। किसी इंसान से आपको दुख पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, आप कहते इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, जिंदगी नहीं बर्बाद की, उसने आपको निखार दिया, उसने आपका टैलेंट उभार दिया। जब बंदे को ठुकराया जाता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, उसके ऊपर कोई चोट पड़ती है। मिसाल देती हूँ, एक बच्ची बड़ी अच्छी थी, शादी हुई जैसे सबकी होती है, लेकिन शौहर कदरदान न मिले, मिसाल ले ले। और ये घर घर कहानी है, कोई आपको मैं कोई नई स्टोरी तो सुना नहीं रही, ये आम होता है। अच्छा, वो लड़की अच्छी थी, घर छुट्टा टूटा, अलग हो गए। अब पेरेंट्स को था कि हमारी बच्ची बड़ी अच्छी है, इस लड़के ने इसकी कदर नहीं की। लेकिन वो लड़की अल्लाह के हुक्म से उस गम को कैसे सह गई कि उसने अल्लाह की किताब को पकड़ लिया। जब किताब का आईना सामने आया तो अपनी भी बहुत सारी कमियां बेशियां दिखी। हालात की उस जंग ने घर तो तुड़वा दिया, लेकिन ईमान सलामत हो गया। बाद में अल्लाह ने ऐसे हालात भी दे दिए कि शायद उस पहली जगह की शादी के वक्त भी वो हालात ना बनते, क्योंकि अंदर निखर गया ना, चमक गया, तो अल्लाह ने बहुत अच्छा साथी भी दे दिया, वो उसके साथ खुश थी। तो क्या कहती थी कभी, जैसे बड़े होते ना माँ बाप और खानदान की औरतें, हाय इस बच्ची से बड़ा जुल्म हुआ, हाय उन्होंने इसकी कदर नहीं की, तो मुंह पे हाथ रख के कहती थी खुदा के लिए उसको कुछ ना कहो, वो मेरा मुखसन है। अगर मैं सारी जिंदगी उसके साथ ही रहती तो मेरी क्या औकात थी, गाँव का एक छोटा सा मोहल्ला, मेरी क्या औकात थी, और मैं आज भी वही कर रही होती जो सब करते हैं। लेकिन चूंकि वो आइसोलेशन के डेज जो थे ना, वो अल्लाह की किताब मिल गई, रब मिल गया, नतीजा क्या निकला कि वो निखर गई, अल्लाह ने उसके लिए रास्ते खोल दिए। तो याद रखिए, मुसीबत जो होती है ना, ये इंसान की उस्ताद बन जाती है। शर्त एक ही है कि आप उससे सबक सीखें। आपने अगर उस्ताद समझना है ना, तो आपको तो हर दुख देने वाला भी अपना उस्ताद लगेगा, नाकदरी करने वाला भी उस्ताद लगेगा। फिर आप देखिए कि हम कामयाबियों पे चूंकि बातें कर रहे हैं ना, और ये छोटी छोटी बातें ही हैं, इसमें कोई हम किस्सा कहानी तो पढ़ नहीं रहे, ये सिर्फ खुद आगही की बातें हैं। कामयाबी की स्पिरिट क्या होती है? आप चाहते हैं कि मैं किस दर्जे की कामयाब हूं? जैसे आप स्पीड की बात करें, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं ना, 30 पे लगा दें, 20 पे लगा दें, 25 पे लगा दें, आप देखते हैं आप अपने थर्मोस्टेट को जहां सेट करते हैं उससे ऊपर नहीं रूम जाएगा गर्म, उस वक्त आते ही फौरन आपकी हीट बंद हो जाएगी। आप एसी खोलते हैं, आप जो टेम्परेचर देंगे उससे ऊपर नहीं जाती, ऐसे है ना? वहां रुकेगी, फिर वो उसको मेंटेन करेगी, जरा रूम ठंडा होने लगा वो आपका फिर चल पड़ेगा। इसी तरह हम में से हर इंसान अपना एक लेवल सेट कर लेता है, मैंने इससे ज्यादा कामयाब नहीं होना। यकीन करें, आदतों से, कुर्बानियों से, गोल से ये सेट किया होता है कि मैंने 25 से ऊपर नहीं जाना, लेकिन ख्वाहिश क्या होती है, हाय मैं कभी 30 पे क्यों नहीं पहुंची, हाय देखो फलां तो 30 पे पहुंच गया। अच्छा भाई, अल्लाह के बंदे, आपने अपना थर्मोस्टेट ही 25 पे सेट किया हुआ है, आपका कोई बड़ा गोल ही नहीं है, आपने सोचा ही कुछ नहीं, बस ख्वाहिश है अंदर एक, तो ख्वाहिशों से तो कुछ नहीं मिलता। तो कामयाबी की स्पिरिट हर माहौल में नहीं पनपती, फिर भी हम देखते हैं कि सख्त मुखालफत की फिजा में भी कितने लोग कामयाब और सुरखरू होकर निकलते हैं। इसी मिसाल को ले आगे, बाहर -20 हो या बाहर -10 हो या 2 हो, आपके इस रूम का टेम्परेचर क्या है जो थर्मोस्टेट आपने सेट किया, बस ये समझ लो -20 है ना, तो शदीद मुखालफतें हैं जिंदगी में, इसको कामयाब नहीं होने देना, हमने इसको आगे नहीं बढ़ने देना। आप क्यों फिक्र करते हैं, -20 पे भी आपका रूम जो है ये 25 पे आ जाएगा अगर आपने थर्मोस्टेट सेट किया हुआ है। तो तुंद ये बादे मुखालिफ से ना घबरा, क्या औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दुनिया में आपको हजारों ऐसे अफराद मिलेंगे जो पैदाइशी तौर पर नक्स के साथ पैदा होते हैं, अल्लाह की बांट है, कोई ऐब नहीं है, ये बस एक आजमाइश है, मगर उन्होंने फिर भी अपने नाम कमाए, बस उन्होंने क्या समझा कि कोई बात नहीं। इस कमी को हमने कमी नहीं बनने देना। आप अपने बदन को देखें, मैं और आप जरा महसूस तो करें, क्या हमारा ये जिस्म एक बेजान जिस्म है, क्या हम पत्थर के बने हुए, कुछ सिल हैं या लोहे के बने हुए, नहीं। आप और मैं, हमारे जिस्म को देखें, ये डेलिकेट है, सॉफ्ट है। बच्चा वक्त के साथ बड़ा क्यों होता है, क्योंकि रिलैक्स्ड होता है, सॉफ्ट होता है, अगर सख्त होता तो कभी ना बढ़ता। बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी में कोई बंदा आपको तोड़ फोड़ भी देना, आप दोबारा ठीक हो सकते हैं, शर्त ये कि आपके अंदर कामयाब होने की स्पिरिट हो। जो हिम्मत हार देते हैं, वो कहते हैं ना पंजाबी में ढेरी ढा देते हैं, वो एक चोट भी नहीं खाते, एक सदमा नहीं उनसे बर्दाश्त होता। क्यों? इसलिए कि वो पहले से ही अपने आप को ढीला ढाला बनाए हुए हैं। वो कहते हैं ना आयरन वूमेन, आसाब मजबूत कीजिए। आसाब मजबूत कब होते हैं? जब आप रिलैक्स रहते हैं। हम आसाब मजबूत करें ना तो टेंस हो जाते हैं, गुस्सा, वो क्या कहते हैं, हमारी भवें तन जाती हैं, हमारी कनपट्टी ऐसे फूल रही होती है, हमारी पल्प जो है वो हमें खुद सुनाई देती है। नहीं, रिलैक्स्ड, जितने नरम रहेंगे ना खुद अपनी जिंदगी में, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, थकेंगे नहीं। आपने कभी देखा होगा सफर करते हैं ना, गाड़ी में जगह कम होती है तो तीन वाली सीट में चार लोग बैठे हैं, अब एक उसको थोड़ा सा कुबड़ा होकर बैठना पड़ता है। अच्छा, वो कुबड़ा होकर बैठा ना, कुछ लोग रिलैक्स्ड होते हैं, वो थोड़ी देर में अपने आपको एडजस्ट करके सीट के मुताबिक सेट होते हैं। अच्छा, बाहर निकलो, कहेंगे हाय आप तो बहुत तंग थे, वो कहते नहीं मुझे तो मजा ही बड़ा आ रहा था, मुझे इधर से भी सपोर्ट मिल रही थी उधर से भी मिल रही थी। वाई? क्योंकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी। कुछ होते हैं स्टिफ, अकड़े हुए, वो थोड़ी थोड़ी देर अकड़ते, हाय फिर इधर को नहीं मारेंगे, इधर मारेंगे, बाद बाहर निकलेंगे हम कहेंगे आज तो कमर ही टूट गई। वजह क्या हुआ? कि आप स्टिफ थे। तो डोंट बी स्टिफ, अपने आप को नरम बनाए। हदीस में आता है कि जिसको नरमी मिल गई उसको खैर मिल गई। फिर आप देखिए, कामयाब लोग ये जानते हैं कि जिस्म को किसी वर्कशॉप में ठीक नहीं किया जा सकता, वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। कामयाबी का सेहत से गहरा ताल्लुक है, ये भी एक चीज़ है जो आज कहना चाहिए फॉरगॉटन है, भूली बिसरी बात है कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। लिख लीजिए कि आप तब ही अच्छे काम कर सकते हैं जब आप ठीक ठाक सेहत के मालिक हों। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड हेल्दी लाइफ को जन्म देता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। मोस्टली हम क्या खाते हैं? पकोड़े। कितना घी होता है पकोड़ों में? आप एक कढ़ाई में डालिए ज़रा एक पाव ऑयल, और आप 3 दफ़ा उसमें पकोड़े फ्राई कर लें तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो किधर का एक पाव, वो उस प्लेट में चला गया जो आपके सामने रखी हुई है। आप 3 लोगों ने शेयर की, आप बताइए कि कितना कितना ऑयल आपके अंदर चला गया। अच्छा खाना, हेल्दी खाना और खूब काम करना। अच्छा, हम नेचुरल से अननेचुरल पे आ जाते, कहते खाना ही कुछ नहीं। मैं कभी नहीं इस चीज़ को एग्री करती। लोग कहते हैं ना, ये ना खाओ इसमें नुकसान है, ये खाओ इसमें बुरा। मैं कहती हूँ अल्लाह ने जो कुछ बनाया ठीक बनाया है, आप खाएं और हजम करें। अपने लाइफस्टाइल को देखिए, आप देखिए खेतों में काम करने वाले दो दो रोटियां मक्खन के पेड़े और साग खाते हैं, मोटे तो नहीं होते। कभी आपने किसी गांव वालों को ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करते देखा? तो अपनी सेहत का ख्याल रखना। एक मशहूर माहिर नफ्सियात है, उनका कौल है कि इस दुनिया का सबसे कामयाब शख्स, आप अपना नाम लिखें, आप कामयाब तरीन शख्स बनेंगी इंशाल्लाह। बनेंगी है कि नहीं उम्मीद? इंशाल्लाह। एक कामयाब तरीन शख्स भी अपने दिमाग की सिर्फ 10% 10% कुव्वत को इस्तेमाल करता है। 90% कहाँ जाता है आपको पता है? उसके साथ कब्र में दफन हो जाता है। ओनली 10% एक बंदा यूज करता है, और मौत की सूरत में 90% उसके साथ चले जाते हैं। अगर बंदे को 10 जिंदगियां मिले, यानी एक के बाद अब 9 और मिले ना, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके मेरे ब्रेन में स्टोरेज रखा हुआ है। नया दिमाग बिल्कुल ना, इसी दिमाग के साथ एक नई बॉडी लगा लें, तो आप देखिएगा कि आपका ब्रेन 10 दफा जी के दोबारा मरे ना, तो आप सबसे बड़े कामयाब। ये नथु फत्तू खैरों की बात नहीं हो रही जो दिमाग यूज ही नहीं करते, बल्कि जो रिसर्च वाले इदारे हैं वो कहते हैं कि आदमी के जहन की जो कुव्वतें हैं ना, उसका कोई सिरा नहीं होता। और मुझे इसमें लगता है कि जैसे अल्लाह अनफिनिट है ना, ला महदूद है, इस तरह उसकी दीवी सलाहियतें भी हैं, बट हम इसे महदूद करते हैं। कहते हैं कि एक इंसान के जहन में कई हजार कंप्यूटर्स के बराबर मेमोरी होती है। आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सबको पता है, सेलफोन्स 16 GB 25 GB। मेरे पास एक फोन था पहले जो नॉर्मल होता है, कभी सोचा भी नहीं था क्या है, लेकिन जब इधर से ग्रुप्स उधर से ग्रुप सारा कुछ करते कराते, खैर किस्सा मुख्तसर, वो मेमोरी जैसे लोगों की भरती है। मैंने पूछा ये क्या, कहने लगे मेमोरी भर गई है, ख़त्म हो गई है, ये मेरे पिछले फ़ोन की बात है। मैंने कहा कितनी GB है, कहने लगे 16 GB है, जो मेरा इससे पीछे का फ़ोन था। मैंने कहा 16 तो बहुत ज़्यादा होती है, बहरहाल ख़त्म हो गई। नया फ़ोन जो मुझे मिला, आपको पता उसकी कितनी मेमोरी थी? 128 GB। मैंने कहा ये तो मेरी अब सारी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। 16 का पहाड़ा पड़े, हाँ तो काम 128 आता है। लेकिन मेरी उस दिन हैरत गुम हो गई कि जब मैंने विद इन 6-7 मंथ मैंने जाके वहां से चेक किया डाटा यूज्ड, तो वो 95 GB वाज यूज्ड। क्योंकि मैं रिलैक्स हो गई, आने दो जो ग्रुप ज्वाइन करें करने, और ये सारे स्कूल के ही सारे अपने इधर उधर के ग्रुप्स होते हैं। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, जरा मैं भी देखूं क्या हो रहा है। फिर मुझे हैरत हुई कि 95 GB हो गए, इसका मतलब ये 127 भी हो जाएंगे एक दिन, और हुए। तो मुझे समझ आई कि वाकई कोई हद नहीं है। हम अपने आप को भी देख लें कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमें रखा है ना, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना अपने ऊपर, तो हम खुलते जाएंगे। इंसान को इतनी लामहदूद सलाहियतें अल्लाह ने दी, तो फिर हम मुअस्सर क्यों नहीं? ये क्वेश्चन लिखें। जब अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है तो यूज क्यों नहीं करते? अब इसको मेरी जुबान से मिसाल लीजिए कि 128 GB हैं, तो फिर भी मैं कोई चीज डाउनलोड नहीं करती, फिर भी मैं किसी को ऐड नहीं करती, इसकी वजह क्या है? लिख लीजिए, ज़हनी रुकावट का सिर्फ एक ही सबब होता है, काहली, सुस्ती। खुद को तकलीफ क्यों दूं? पहली चीज लिखी है हमारी सुस्तियां। वल्लाही मैं इस बात पे तो अपने आप को सबसे पहले आगे करूंगी कि अगर मेरी सुस्ती दूर हो जाए, मेरी काहली दूर हो जाए, तो मैं भी जाने से पहले दुनिया से कुछ करके जाऊं। आज मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को काहिल देखती हूं। तकलीफ क्यों दूं खुद को, ये पहली चीज होती है। अब आपने अपनी खुद ढूंढनी है। दूसरी रुकावट, खौफ। ये मामला बड़ा पुरखतर है, खौफ बहुत है। नहीं, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती, नहीं गलत हो जाएगा। आप देखिए, कोई पायलट कभी जहाज चला सकता है अगर खौफ का जज्बा उस पर गालिब आ जाए? जहाज छोड़ी वो तो गाड़ी नहीं चला सकता। वजह क्या है? خوف ہے. تو خوف جو ہوتا ہے نا یہ ہمیں ہماری صلاحیتوں سے فائدہ نہیں لینے دیتا. تیسری چیز ذاتی تشخص جو منفی رویوں کی پیداوار ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں میں اپنی ذات کو الگ ہی رکھوں. دیکھیے بہت سارے لوگ جتنا ان کو اللہ کانشیس ہونا چاہیے نا اتنا خود کانشیس ہوتے ہیں. میں کیوں بری بنوں, میرے پہ بات کیوں آئے, وہ غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں, واللہی وہ غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کوئی اپنا کردار ادا نہیں کرتے. وہ شادیوں میں غلط دیکھتے ہیں, وہ رشتہ داریوں میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں, وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, وہ اپنے ساتھیوں میں دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں چپ کر کے گزر جاؤ, بس کام کرو. واللہ ایسی باتیں ہمیں نہیں بچائیں گی قیامت کے دن. ہم ایسے دیندار جو نمازیں روزے تہجد کی باتیں کر کر کے لوگوں کو ستاتے ہیں, اگر اس سوسائٹی کا گند ہمیں دکھے اور ہم اس میں اپنا وہ حصہ نہ ڈالیں جو ڈال سکتے ہیں, اللہ کی قسم قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی. اور آج سب سے بڑی پکڑ جو ہے ہم دینداروں کی ہے, کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کر معاشرے کی گندگی کو برداشت کرے. کیونکہ ہمیں اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے, میں کیوں بری بنوں, مجھے کوئی برا کیوں کہے. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں نا, ان کی وجہ سے اپنے ذہن کی ساری قوتوں کو ہم استعمال ہی نہیں کر پاتے. اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا رویہ یہ بن چکا ہے, اجتماعی رویہ بن چکا ہے. محاورے بھی تو ایسے ہی ہیں نا ہماری سوسائٹی میں, دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت, 900 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی. یہ محاورے ہیں جو ہمیں نہیں بننا دیتے ملا. ہم کہتے ہیں چھوڑو جی ہم کیوں مولوی بنے, لوگ پھر ہمیں دیکھیں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم تعمیری سوچ نہیں رکھتے. یقین کریں یہ دنیا بالکل جنت بن جائے گی جس دن سب لوگ صاحب درد اور خوبیوں کے مالک لوگ سر جوڑیں گے اور تعمیری انداز میں سوچیں گے. شرط ایک ہے, مخلص ہو, مخلصانہ رویہ ہو اور عقیدت ہو. دیکھیے آج دنیا میں واللہ ہی جتنا اللہ نے مسلمانوں کو کچھ دیا ہے پہلے اتنا نہیں تھا, سچ ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہمارے اسلاف ایک حدیث لینے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے. جابر کی حدیث آپ نے بار بار سنی, ملک شام گئے, امام بخاری کے راہلہ آپ نے سنے, جو لوگ آتے ہیں وہ سنتے ہیں یہ چیزیں. آج کتنا آسان ہے, ایک کلک کے اوپر آپ ہزاروں لوگوں کو میسج کنوے کر سکتے ہیں نا, ہے کہ نہیں؟ ایک طرف نبی کو دیکھیے کہ وہ مکہ کی گلیوں میں گلی گلی پھر کر پیغام دیتا ہے, مکہ سے طائف جاتے ہیں اور پاؤں میں جوتیاں چپک رہی ہیں خون کی وجہ سے کہ لوگوں اللہ کی بات سنو. تھا نا, ریسورسز کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت. سب کو پتہ ہے سیرت کے جو حالات تھے. اس ایک شخص اور ان کے ساتھ 100 کچھ لوگ تھے اس وقت دنیا میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی, 100+ لوگ. ان کی وجہ سے ایک چینج کتنے میں آ گیا؟ چلیے ہم سارا ہی اکٹھا کر لیتے ہیں. شروع کے اللہ کے 13 سال چینج کے نہیں تھے واللہ ہی, وہ تو خود کو بدلنے کے تھے, وہ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ تھی. صرف اصل میں 10 سال تھے اللہ کے نبی کے پاس, اونلی 10 ایئر. آج دیکھیے 23 اپریل ہے 2016, آپ پیچھے جائیے 23 اپریل 2006, بس یہاں سے سفر شروع کریں. آپ شاید انگلیوں سے گن سکتی ہیں 2006 سے لے کے آج تک آپ نے کیا کیا. اللہ کے نبی اور 100 کچھ صحابہ تھے پوری دنیا میں اسلام کے نام پہ. مسجدیں نہیں تھیں, ادارے نہیں تھے, کمپیوٹرز نہیں تھے, ایپس نہیں تھے, فیس بک نہیں تھی, ٹویٹر نہیں تھا, ویب سائٹ میکنگ نہیں تھی, لیکن وہاں سے ایک پیغام نکلا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اتھر نا یہی دعوت تھی آپ کی ڈے ون سے. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کی سرحدیں کہاں تک پھیلی, تبوک تک قدم لگوا دیا آپ کے. کہ نبی تبوک تک, وہ ہرقل کی آنکھوں میں آنکھیں بس ڈال کے دکھاؤ کہ ہم مردہ قوم نہیں ہیں, ہم زندہ. کچھ نہیں ہوا, آنے کی جرت ہی نہیں ہوئی. 2 سال ابو بکر صدیق فتنوں میں گزر گئے, اتنی ازمائشیں کہ پہاڑوں پہ ٹوٹیں تو پہاڑ گر جائیں. صرف 10 سال, میں کہہ سکتی ہوں اگر میں بات غلط نہ کہوں, 10 سال مدنی دور اور 10 سال عمر فاروق کا دور. 20 سال کی یہ کھیل ہے جو آج 100 کچھ مسلمان ملک آپ کو مجھے دنیا میں دکھ رہے ہیں. آج کیوں لوگ اسلام قبول اس طرح نہیں کر رہے؟ پرسنل ون آن ون بیس کوششیں ہیں نا اس وقت, ہیں صاحب درد, ریورڈس ہی ہیں بےچارے, تو ایک مسلمان ہو رہا ہے, دو رہا ہے. جب اجتماعی طور پہ اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے نا تو پھر پوری پوری بستیاں آباد ہوتی ہیں. ابو ذر غفاری ایک شخص مسلمان ہوئے, और जब वापस गए अपनी कौम को जमा किया। 3, 4, 10 मिनट लगाए होंगे। ये सुन के आया हूँ, मेरा दिल ठुक गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तुम क्या कहते हो? पूरी बस्ती इकट्ठी मुसलमान हुई। मुल्कों के मुल्क फतह हुए, इलाकों के इलाके फतह हुए। टूटी हुई तलवारों के साथ सहाबा ने दुनिया को फतह किया। आप पढ़ें हिस्ट्री, आपके खून गर्म हो जाएंगे। आज क्यों नहीं हो रहा? आप आज से लेकर अपनी पूरी जिंदगी बैक पे जाए, आपको कौन सी आखिरी खबर मिली कि फुलां पूरा मुल्क मुसलमान हो गया? जैसे आप कहते ईरान हो गया, इराक हो गया था, कैसरो किसरा की कुव्वतें टूट गई थी, मिस्र, रोम, फारस, आज जितने ये यूएई के कंट्रीज हैं, ये सारे हजरत उमर के दौर की कहानी है। आज क्यों नहीं होते? मुझे अपनी याददाश्त के ऊपर भरोसा करूं ना, अपना लाशौरी का ही दौर था जब रूस की जंग लगी थी, अफगानिस्तान और रशिया की जंग थी। तब मुझे याद है कि रशिया जब टूटा था ना, तो उसमें से ये 7 रियासतें निकली थी जिसको आज लोग उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यानी आखिरी बड़ी ताकत जो टूटी थी ना, वो रूस टूटा था। बात समझ गए? आज तक हम मुसलमान इतने, अब रिसोर्सेज आज के जमा करें, मस्जिदों की तादाद, दीनी इदारों की तादाद, हर साल फारिगो तहसील लोगों की तादाद देखें, रिजल्ट्स किधर है, इस्लाम किधर दिखता है? वजह क्या? सर नहीं जुड़ते, तामीर की कोशिश नहीं है, मुखलिसाना कोशिश नहीं है, और दीनदारों की दूसरों से अकीदत नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, छोटी सी एक पोटली लेके बैठे हैं, कहते हैं बस है ना, हमारा तो मर्जी है ना, हम दूसरे की मर्जी क्यों माने? याद रखिएगा, ये वो चीजें हैं जिसने इस वक्त दूसरी दुनिया को इस्लाम से दूर किया हुआ है। आज इस वक्त हम सब को सर जोड़ के बैठ के सोचना है कि जरूरत किस काम की है। हर बंदे ने हर काम करना है, चाहे करना आता हो और चाहे जरूरत हो ना हो। आप अपने इस शहर की देख ले मिसाल, आप सिर्फ ग्रीनलैंड में खड़े होके गिने। जब मैं आई थी इधर, तो सबसे पहले मैंने यही देखा था कि ओस्लो में कितनी मस्जिदें, तब जो मुझे बताई गई थी गालिबन 70 मस्जिदें थी। आज भी आप देख सकते हैं जाके किसी ना किसी जगह। तो हमारा पहला स्कूल नॉर्वी घाटा में था ना, आप में से कुछ लोग जानते हैं, एक डॉक्टर साहब की जगह लेकर किराए की, इतना किराया था उसका कि हम सारा महीना फिक्र में रहते थे कि एंड पे इतनी फीसें जमा हो जाए कि ये किराया दे दें। लेकिन हमारे इधर मस्जिद, यानी वक्त उस जगह खड़े होके जब हम गिनते हैं, नाम लिए बगैर बता दूं, मेरे लिए 7-8 मस्जिदें तो जस्ट विद इन वॉकिंग पे थी, और कोई एक कमरा देने को हमें तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दे दिया। मस्जिद क्यों बनती है भाई? सारे ग्रीनलैंड में क्यों बनाते हैं? कहते इसलिए कहते हैं कि हमारे गांव की भी मस्जिद इधर होनी चाहिए, हमारे ग्राम की भी होगी। तो भाई स्ट्रोमन में तो एक ही है, लेले स्ट्रोम में तो तब शायद थी भी कोई नहीं, और वो इधर उधर कई जगह आज भी कोई मस्जिद नहीं है। तो सारी मस्जिदें ग्रीनलैंड में क्यों बनती? क्योंकि ये सेंटर है भाई। ग्रीनलैंड में हम स्कूल बनाइए, आप यहाँ यूथ सेंटर बनाइए, आप यहाँ नॉन मुस्लिम्स के दावा सेंटर बनाइए। मस्जिदें बहुत है माशाल्लाह, पूरी जमीन मस्जिद है। तो हम काम प्लानिंग्स के साथ नहीं करते, हम अपने साथ वो चीजें नहीं लगाते जो हमारे पास नहीं होती। भाई मेरे पास एक चीज नहीं है, बिस्मिल्लाह आपके पास है, आप कर लीजिए ये काम। तो जरूरत है इस वक्त लोगों को इस्लाम देने की। आपका मेरा नाम कब तक रहना है? आप अपनी जाती कामयाबी पे आ ही नहीं सकते जब तक इज्तमाई कामयाबी ना हो। और याद रखिए कि जिंस, नस्ल, रंग, रूप, मुल्क, मजहब, इन सब से कतए नजर होकर, सारे ऊपर उठकर अगर आप सिर्फ लोगों को एक अल्लाह से जोड़ने लग जाए ना, तो ये बांट तो पहले ही खत्म हो जाएगी। ये सोमालियों की मस्जिद, ये बंगालियों की मस्जिद, ये पाकिस्तानियों की मस्जिद, ये अरबों की मस्जिद है, ये बांट के नहीं। दूसरे कल्चर का बंदा अंदर चला जाए, लोग उसको एलियन समझते हैं, वो काली फिर रही है, जरा परस उठा के रखना। आज हमारी ये सोच हो गई, वो कहां हम सब एक रहे कि जिसके लिए अल्लाह के नबी ने सारे रंग नस्ल खत्म किए। खुतबा हज्जतुल विदा पे क्या बोला था अल्लाह के नबी ने कि लोगों, किसी अरबी को किसी अजमी पे और अजमी को अरबी पे फजीलत नहीं है। तो याद रखिए, अंदर से हम सब एक हैं। हर इंसान का इनसाइट एक है ना, इनसाइट भी एक, और इनसाइट एक होता है वो अलग बात है, बदल जाए। दिल सब में एक, जिगर एक, गुर्दे दो। आप पूरी बॉडी को अंदर से खोलें, काला, गोरा, अरब, काफिर, फाजिर, मोमिन, मुत्तकी, शराबी, नमाजी, परहेजगार, अंदर से सब एक है। तो जब अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर एक है ना, तो मान लीजिए कि अल्लाह ने हर बंदे की फितरत, उसका इंस्टिंक्ट, उसमें भी सेम चीजें डाली हैं। लेकिन फिर क्यों कुछ लोग तहज्जुद गुजार बन जाते हैं और कुछ जो हैं वो शराब खाने में जाते हैं, कुछ काबा में जाते हैं, कुछ कलीसा में जाते हैं? रवैये। और ये जो चीजें हम पढ़ रहे ना, ये रवैये बंदों को दूसरी तरफ ले जाती हैं। आप और मैं अगर इन चीजों को अपने अंदर लाना चाहते हैं तो हमें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। याद रखिए कि ये जिंदगी एक दिन का खेल नहीं है। क्या आपने खेला और खत्म? ये जारी रहेगा, आप खेलते ही रहेंगे। अब आपने, मैंने जितनी बातें अभी तक की हैं, अमली तौर पे क्या करें? क्या वाकई मुझे आपको इन बातों को सुनने के बाद कुछ फायदा होगा अगर हम खुद को भूलकर दूसरों पे बात करने लगे? क्या मैं और आप अपने ऊपर इन चीजों को ले सकते हैं? कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप और मैं बहुत आगे पहुंच सकते हैं। और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो दुनिया से जब हम जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना, खसकम जहां पाक। आप जो हैं वो हैं, और जो थे जो नहीं थे, बस दैट्स इट। आपको मुझे जरूरत नहीं है, तो मुझे आपको इंशाल्लाह इसमें कोशिश करनी है। दुनिया के कामयाब लोगों को देखें, कैसे वो कामयाब हुए। आप नॉन मुस्लिम लोगों को ही देख लीजिए। हम कहते हैं ये इसलिए कामयाब है कि ये कपड़े कम पहनते हैं, ये इसलिए कामयाब है कि ये शराब पीते हैं, ये इसलिए कामयाब हैं कि इन लोगों का किरदार जो है ना, करेक्टर बिल्डिंग इनकी ज्यादा हुई है। कल हमारा इधर एक ट्रेनिंग सेशन था, उसके बाद वाकई हम सबको ऐसे ही लग रहा था कि अब कुरान सुन्नत तो पढ़ ली है, अब हमें किरदार साजी की जरूरत है। किरदार नहीं बन रहा। वो कहते हैं ना कि नमाजी तो हैं लेकिन साहिब नमाज नहीं है। कुरान है, हामिले कुरान नहीं है। मुझे आपको हकीकत में खुद को ढूंढना है, और इंशाल्लाह जब आप जरूरत महसूस करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करेगा। अब मैंने जितनी बात की है, इसमें से आपके अपने जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ सुनने का नहीं है, आप मुझसे सवाल करें या आप मुझे कोई अपनी फीलिंग बताएं, तो हम इंशाल्लाह थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। जी, आप बहुत कमी है डिसिप्लिन की, ये आगे हम पढ़ेंगे, पूरा एक मौजू है। हकीकत में ये सच है कि आज हम डिसिप्लिन नहीं है। देखिए आपकी बसें, मैं रास्तों में चलते आते बसों के स्टैंड देखती हूँ, आते जाते बसें, तो मैं कहती हूँ किसने ये सारा सिस्टम सेट किया था? मुझे किसी ने बताया कि यहाँ, अभी ये मेरे लिए नई खबर है कि नॉर्वे में आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हैं और 15 मिनट गुजर जाए, 15 मिनट, आपको पता है ना अगली बस का एक टाइम होता है, 15 मिनट गुजर जाए और वो बस ना आए जो लिखा हुआ है, तो आप किसी टैक्सी को खड़ा करके उस पर अपनी जगह पे जाएं और गवर्नमेंट आपको पे करेगी, क्योंकि उनकी गलती है कि बस लिखा हुआ था तो नहीं आई। अब मुझे आप बताइए, और आज तक आपने देखा होगा 15 मिनट कोई नहीं लेट होती, 2-4 मिनट बर्फ में कभी हुई हो, वरना मैंने तो वो भी नहीं देखा। या हमारे सामने, मैं खिड़की में जब शाम को चले जाते हैं लोग, तो मैं यहाँ खड़ी होकर देखती रहती थी, लोग आ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मुझे समझ आती थी इनकी बस निकल रही है। तो ये सिस्टम बन गया ना, हम क्यों नहीं बना सकते? मैं अक्सर सोचती हूँ कि मुसलमान फोहड़ होते हैं क्या? मुसलमानों के नसीब में बस धक्के हैं, इनकी सड़कें टूटी ही रहे, डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। आप सिर्फ एक मुसलमानों की इमारत में दाखिल होकर देख लें, जूते रखने से आपको पता लग जाएगा कि ये मुसलमान है। जी, और कोई बात? जी, आप डरते हैं हम लोगों से। जी, सच है, हम लोगों से डरते हैं। जितना हम लोगों से डरते हैं, अगर हम इतना ही अल्लाह से डरने लग जाते ना, तो हम कुछ कर जाते। और मुझे इन सारी बातों को कहते हुए, मैं जिस दिन से ये आपसे बात कर रही हूँ ना कामयाबी की, मेरे जहन में याद रखिए, मेरी अपनी जिंदगी का यही स्लोगन है, कामयाबी है कि पूरी दुनिया पे ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी हो जाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल खुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही लियुज़हिरहु। अल्लाह ने 3 दफा कुरान में अपने नबी को कहा कि अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक के साथ भेजा पूरी दुनिया के लिए, ताकि इस दीन को गालिब कर दे। तो मेरी जिंदगी में जो गोल है वो ये है कि इस्लाम गालिब हो जाए। कोशिशें हैं, हम इरादे कर सकते हैं, नियतें कर सकते हैं कि जिस दिन लोगों को इस्लाम मिल गया, आपका नेवर कुफर पे मरने की बजाय मुसलमान होके मरा, आप कामयाब है। आप किसी मुल्क को नॉन मुस्लिम मुल्क कहते थे, वहां के रूल रेगुलेशन इतने अच्छे थे, बस आपने जाके अल्लाह की बड़ाई का जिक्र कर दिया, उनको बात समझ आ गई, वो मुल्क मुसलमान हो गया। हमारी कामयाबियां पैसा कमाना नहीं है, बड़े घर लेके करना क्या है, उसी में से निकालेंगे लोग तो और दुख होगा कि इतना बड़ा घर छोड़ के कब्र में चले गए। हम सबको इसके लिए ख्वाब देखने हैं। आप एक ड्रीम लैंड बनाएं अपने जहन में, ऐसी दुनिया जिसमें सब इस्लाम पे, हर तरफ सुकून है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, कत्ल नहीं है, कोई डिवोर्स नहीं है, कोई घर नहीं टूट रहा, तो इसको लोग क्या कहेंगे? जन्नत। तो वहाँ जन्नत भी तो जन्नत इसीलिए ना, देखिए ला यस्मऊना फीहा लगवम वला तासीमा या ला तस्मऊना फीहा लागिया। जन्नत असल में जन्नत कोई वहाँ की खूबसूरती और सीन्स की वजह से खूबसूरत नहीं है, वहाँ के लोगों की वजह से खूबसूरत है। लग्व नहीं सुनेंगे, बेकार बातें नहीं सुनेंगे, ताने नहीं होंगे, खौफ नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, तो क्या मैं और आप इस दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते? यह हम मुस्लिम्स के पास प्लानर था दुनिया को कामयाब करने का, आज धक्के इसलिए खा रहे हैं कि इस प्लानर को छोड़ के खुद लड़ रहे हैं। कोई नमाज ना पढ़े इसकी कितनों को फिक्र है, नमाज पढ़ते किस तरीके से इसकी फिक्र देखिए जरा, घुले जा रहे हैं इस पे। कोई मुसलमान है कि नहीं इसकी कोई परवाह नहीं, होने के बाद किस मसलक किस फिरके से इसकी ज्यादा गम है। और मैं दर्द के साथ ये बात कह रही हूं कि हम जब दीन के नाम पे कोई काम करें तो जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ जाती है। वापडा वालों ने कहा आपको बिजली देंगे, दैट्स इट। ये रूटर कंपनी ने कहा आपकी बसें सही चलाएंगे, दैट्स इट। किसी और ने आपके इस नेट का सिस्टम ले लिया जी के नेट कॉम है, आपके नेट चलाएंगे। हर कंपनी ने एक जिम्मेदारी ली हुई है ना, मुसलमानों ने क्या जिम्मेदारी ली थी? कुन तुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, कभी अल्लाह कहते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कभी अल्लाह ताला कहते हैं हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन। तो याद रखिए आखिरी बातें आज के इस सेशन की कि मेरी आपकी जिम्मेदारी इस दुनिया को इस्लाम देना। हम तो अभी अपनों को नहीं दे पाए, गैरों तक कहाँ जाएंगे? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा किरदार दे दे, ऐसा दे दे कि जिसके बाद हकीकत में हम खुशियां मनाएं। और इंशाल्लाह जिस दिन सोच लेंगे अपना हिस्सा डालें, मैं नहीं कहती हमारी जिंदगी में कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की तरह, कहते हैं कि जब उनके लिए आग जलाई गई तो एक चिड़िया ने अपनी चोंच में पानी डाला और आग पे जाके फेंका, तो पास कोई देखा परिंदा हंस पड़ा, कहने लगा इतनी बड़ी आग बुझाने के लिए तेरा चोंच भर पानी? तो कहने लगी मुझे इसकी क्या परवाह है कि आग बुझी कि नहीं बुझी, मैं कल क़यामत के दिन कह दूंगी अल्लाह को कि मेरी तो चोंच ही इतनी थी। तो आज हमारी बातें नकार खाने में तोती की बातें हो जाएं, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन हम कल क़यामत के दिन सुरखरू होके जाएं कि अल्लाह हमारी सारी जिंदगी की तड़प ये थी कि दुनिया को इस्लाम और उसकी खूबसूरती दिखा सके। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। जी आप देखिए इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या आपको पता? आप सोचेंगे अमेरिका, और आपके हर चीज़ पे अमेरिका गरीब के गुनाह माफ करा देते हैं। इसकी सबसे बड़ी रुकावट शऊर का ना होना, शऊर ही कोई नहीं। कुछ करना ये प्लानर में नहीं है, हज करना है, उमरे कराने हैं, और हमने बहुत सारे काम करने। मैं जब आप ये बात कह रही हैं इस पे तो बीसियों बातें हैं, लेकिन दिल नहीं चाहता इन बातों को दोहराने को, लेकिन मैं जब इस मुल्क में आई और हमने जब पहली दफ़ा हमारे स्कूल में पैसे इतने हुए कि हमें स्कूल का अकाउंट चाहिए था, तो भाई किस बैंक में जाएं, हमें इंटरेस्ट फ्री अकाउंट चाहिए। कहा इधर तो बैंक अकाउंट ही कोई नहीं है ऐसा। भाई क्यों, इतने मुसलमान हैं, लाखों मुसलमान हैं, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? कहते कभी हुआ नहीं। मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँ ना कि जब हमने स्कूल का पहली दफ़ा बैंक अकाउंट बनाया था तो उस वक्त कितने पापड़ बेले थे, और हमने इंटरेस्ट फ्री ही लिया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, वैसे कोई कहता नहीं है, आप कह रहे हैं तो कह दे। मैं ये सोचती थी इतने मुसलमान हैं इधर, क्या इनको एक ऐसे बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक कि वो मुसलमानों के हिसाब से वहाँ डीलिंग्स हों? तो शऊर नहीं है। आज सोचें आप देखें क्या होगा। आप कहते हैं कि अमेरिका में आम बात है ये अब कि मुसलमानों के कब्रिस्तान हो अलग, एक सिंपल सी मिसाल दे रही हूँ। वजह क्या है कि उन्होंने बच्चों के गली गली स्कूल बना लिए। आप अमेरिका कनाडा कभी चक्कर लगा के आके देखें, जिस तरह आपको अपने मुल्कों में मुस्लिम स्कूल नज़र आते हैं ना, वहाँ भी है। वहाँ जाके अगर हम कहें ना हमने नॉर्वे में एक मुस्लिम स्कूल बनाना है बच्चों का, तो वो कहते हैं सो के ये कौन सी बड़ी बात है, और आप उन्हें कहते हैं इधर है कोई नहीं और कोई खुले भी तो चलता नहीं, तो वो हमारा मुँह देखते हैं कि ये कैसी बेवकूफ़ों की बातें करते हैं। चूँकि मुसलमान बाशऊर थे ना, जिंदा कौम थी, उन्होंने कोशिशें करी। आप देखिए मुस्लिम लॉज आप अपनवा सकते हैं, इतनी रिलीजियस फ्रीडम तो आज इन मुल्कों में है, क्या आप कहते हैं इट्स माई रिलीजन, आप बड़ी से बड़ी जगह पे रोक दिए जाएं, और अमेरिका में असूल है ये कि आप कहीं जाके कहते इट्स माई रिलीजन, यानी दाढ़ी है या जुमे की नमाज है या फर्ज की नमाज है, जो भी है। मैंने इसका छोटा सा मिसाल दे देती हूँ आखिर में। हमने इस साल अभी ट्रेवल किया, जब मैं आई तो कैलिफोर्निया से हमारी शायद 10 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट थी ओस्लो की। अब नॉर्वेजियन कंपनी क्या है, आप तो उसको नॉन मुस्लिम कंपनी कहेंगे ना। इत्तफाक देखिए कि हमारी फ्लाइट का टाइम इधर आने में आपको होता है दिन रात बदलता है, 9 घंटे या 10 घंटे की फ्लाइट थी टोटल, और उसमें 5 नमाजें हमें आई, क्योंकि वहां से हम आ रहे थे तो दिन इधर बढ़ रहा था तो जो था। मैं कहती हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें ये 5 नमाजें पढ़वाई, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे आगे क्या कपड़े बिछा दें। ओह इट्स योर प्रेयर टाइम, यस। उन्होंने बाथरूम लॉक कर देते थे, एयर होस्ट पर्दे डाल देती थी कि ये आपकी प्रेयर का टाइम है। और यहां से भी मेरी आगे पाकिस्तान की हमारी फ्लाइट थी 2 दिन बाद की, तो उसमें हमने जंग कर करके 2 नमाजें पढ़ी जी अपनी सीट पे पढ़े। भई ये लोग चल फिर रहे हैं, ये खतरा नहीं, नहीं इजाजत नहीं है। आप शऊर नहीं, दूसरे आपके दीन की ज्यादा कदर करते हैं सिर्फ ये कि हम दें। उनको बताएं ये हमारा रिलीजन है। अब तो मुझे बातें भूल गई और अब टाइम पूरा हो गया तो नहीं कहना चाह रही। इतनी उस सफर में उन ए जो होस्टिंग कर रहे थे उनसे दोस्तियां हमारी हो गई सिर्फ इस पे, प्रे फॉर मी, रिमेंबर अस। जी आप बेटा देखिए, ये बहुत सारों को अपने इस्लाम से दूर रखा हुआ है। जितने खूबियों के मालिक लोग हैं ये करेक्टर वाइज, मैं किरदार साजी की बात कर रही हूँ, सिर्फ वो कहते हैं कि एक दिया सिलाई दिखाने की देर है, लेकिन हम मुसलमान आपस के झगड़ों में पड़े हुए हैं और सज़ा ये लोगों को मिल रही है कि ये इस्लाम से दूर जा रहे हैं। तो बहरहाल इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद कुछ बातें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपनी इस्लाह की फ़िक्र लगा दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।